पिछले इतवार को जो आप लोग यहाँ पर थे, आपको याद होगा हमने इस बात को देखा था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा प्रभु है, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में हमने इस कुछ बातों को देखा था। और मत्तियुस के 28वें अध्याय में हमने इस बात को देखा था किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद दर्शन दिया, और हमने उस चार्ट को भी देखा था जिसमें 12 अलग अलग दर्शन के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह 40 जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे और शिष्य को लोगों को दिखाई देते रहे, और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। और तब हमने इस बात को देखा था कि न केवल मत्ती सुसमाचार इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह का राज की स्थापना होगी, और प्रभु यीशु मसीह की राज उसका कलीसिया है, और किस रीति से उस राज के नियम होंगे, उस राज के लोगों के क्या लोग कौन होंगे, उस राज के जो शासक होगा वो कैसा होगा, इन सारी बातों को देखा था। और किस प्रकार से अंतिम अध्याय में 28 अध्याय में किस प्रकार से उस राज का विस्तार होगा, प्रभु यीशु मसीह का राज का विस्तार जो कलीसिया है किस प्रकार से विस्तार होगा। और हमने इस बात से अंत करा था कि यीशु मसीह की कलीसिया का विस्तार जो उसका स्वर्ग राज है जो इस पृथ्वी पर है उसका विस्तार सुसमाचार प्रचार के द्वारा होगा, और सुसमाचार प्रचार की सामर्थ्य के बारे में हमने विचार किया था। आज मैं एक दूसरे स्थल पर आपको ले जाना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय है, इसमें 25 पद हैं, मैं पूरे पदों को नहीं पढ़ूंगा, बीच बीच में आपके साथ जाऊंगा। 21 अध्याय को यूहन्ना उसके 21 अध्याय मैंने कहा 25 पद हैं। यूहन्ना सुसमाचार बहुत सुंदर सुसमाचार है, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखता है। पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का परिचय है, और न केवल परिचय है लेकिन कुछ शिष्यों का भी परिचय होता है जिसमें पतरस भी शामिल है, यूहन्ना भी शामिल है। और तब उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ये यूहन्ना अलग रीति से सुसमाचार को प्रकट करता है, और दो मुख्य बातें इसमें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों के। एक मुख्य बात ये आती है क्यों यूहन्ना सुसमाचार लिखा गया, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक क्यों लिखी गई, 20 अध्याय उसका 30 पद, यूहन्ना सुसमाचार का ये सुसमाचार क्यों लिखा गया उसका 20 अध्याय 30 पद। यीशु ने बहुत से अन्य चिन्हों को चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो क्यों सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार लिखा गया, उस सुसमाचार लिखे जाने का एक उद्देश्य यह है कि ताकि तुम यीशु मसीह पर जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है उस पर विश्वास करो, और विश्वास करने द्वारा जीवन पाओ। जीवन की प्राप्ति धर्म कर्म के द्वारा नहीं है, उद्धार की प्राप्ति अपने क्रिया विद्या के द्वारा नहीं है, या किसी व्यवस्था को पूरा करने द्वारा नहीं है, रीतियों को पालन करने द्वारा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज भी उस पर विराजमान है, और फिर से वो मेरे और आपको लेने के लिए आएगा। उस यीशु के अद्भुत और महान बलिदान, उस कार्य पर विश्वास के द्वारा तुम जीवन पाओ, आनंद जीवन पाओ, ये उद्देश्य है। और एक और बहुत बात यूहन्ना इस आखिरी भाग में लिखता है 21वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य किए, इस थोड़े से समय में केवल तीन साल तक को प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सेवा के रूप में दिखाई दे, 30 साल तक वो अपने माता पिता की अधीनता में रहे, 3 से 3.5 साल तक उन्होंने सेवा की जिसमें शिक्षाएं थी, आश्रम था, चंगाई थी, बहुत कुछ था, सबसे बढ़कर बलिदान और जी मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना था। लेकिन वो क्या कहता है 24 पद में, 21 अध्याय के यूहन्ना 21 अध्याय 24 पद में, ये वही चेला है जो इन बातों की साक्षी देता है जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी साक्षी सच्ची है, अर्थात यूहन्ना उसकी साक्षी सच्ची है। और भी बहुत काम है जो यीशु ने किए, यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो मैं सोचता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे इस संसार में भी ना समाती। प्रभु यीशु मसीह के कार्य, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का सबका वृत्तांत किया जाता और उनको लेकर सारी पुस्तकें लिखी जाती, तो इस पुस्तक के संसार में ना समाते, इतना अधिक इस छोटे से अल्पकालिक समय में जो कुछ प्रभु ने किया, जो कुछ कहा, जो कुछ दिखाया, जो कुछ करा, उनका अगर वर्णन किया था। लेकिन जो सुसमाचार में लिखी हुई बातें हैं वो मेरे और आपके लिए इसलिए हैं, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाई ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएं और आगे बढ़ सकें। जब हम 21वें अध्याय में आते हैं, यौना उसके 21वें अध्याय में, तो यौना 21वें अध्याय में 25 पद को हम दो भागों में बांटते हैं, लेकिन पूरी रीति से हम एक बात को देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की चिंता है, प्रभु यीशु मसीह का कंसर्न है, जीसस कंसर्न एंड पीटर रेस्टोरेशन, यीशु मसीह का चिंता और पत्रस की वापसी बुलाई जाना है, रेस्टोरेशन बुलाया जाना, वापस को ले आना है। ये पूरे इन 25 पदों में हम पाते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह की अपनी वो चिंता अपने शिष्यों के प्रति दिखाते हैं। उन घटनाओं पे थोड़ा समझाएंगे, लेकिन किस प्रकार से उस चिंता के कारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन शिष्यों के लिए भी बलिदान किया था, और उस चिंता के कारण किस प्रकार से वो पत्रस को पुनः वापस ले आते हैं। पहले पद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले पद से लेकर 3 पद तक कुछ घटना को देखेंगे। इन बातों के पश्चात यीशु ने तिब्रियास झील के किनारे फिर से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया और उसने इस प्रकार प्रकट किया, शमौन पत्रस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है और गलील के काना के नतनेल और जब्ती के पुत्र और यीशु के चेले में से अन्य दो इकट्ठे थे। शमौन पत्रस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उन्होंने कुछ भी ना पकड़ा। एक विडम्बना सी दिखाई देती है, एक अद्भुत बात दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर पहले क्रूस पर बलिदान हुए हैं, बलिदान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी भी उठे हैं। पत्रस को खबर में मिल गई है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, शिष्य को खबर मिल गई है यीशु मसीह जी उठे, लेकिन फिर भी पत्रस क्या कर रहा है, पत्रस क्या कर रहा है? और पत्रस ने कहा, भैया मैं तो अपनी मछली पकड़ने जा रहा हूँ, मैं तो अच्छी तरह से अपना व्यवसाय करता था, मैं मछली पकड़ता था और मछली पकड़ने में तो मैं माहिर था, अब मैं पुनः जा रहा हूँ। क्या कारण था? ये कौन सा पत्रस है? ये पत्रस वो पत्रस है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था, और जब बुलाया था लूका उसके 5वें अध्याय में, उस समय भी हम एक घटना को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह रात में इनके पास आते हैं, पूरी रात शिष्य मछली पकड़ते हैं, पत्रस भी मछली पकड़ रहा है और पूरी रात इनके हाथ में कुछ नहीं लगता। तब प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस से कहा कि दायने में तू जाल डाल, और जब दायने में जाल डाले कहते हैं, और तब ये लोग मछली निकालने लगे तो जाल इनसे खींच नहीं पाया, और तब पत्रस एकदम से नाव कूद करके जल में गिर कूद गया और कह लगा, हे प्रभु यीशु मसीह तुम मुझसे दूर हो, मैं तो पापी मनुष्य। वहां पर सबसे पहले हम पत्रस के संगीकार को पाते हैं जो उसने कहा, मैं पापी मनुष्य हूँ, पापी मनुष्य हूँ। अब कुछ समय बाद पत्रस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसी स्थल में लूका अगर 5:1-11 पद तक पढ़ेंगे तो आपको पूरा वृत्तांत मिलेगा। तब प्रभु यीशु मसीह 8-11 पद तक में घटना होती है, तब प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि पत्रस तू मेरे पीछे ले, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछलियों का नहीं, मैं तुझे, अभी तक तू मछलियों पकड़ रहा था, तू मेरे पीछे ले, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और कितने सुंदर ये बुलाहट थी जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पत्रस को दी, और लिखा हुआ है पत्रस सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अब पत्रस प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ रहा है। मत्तियुस के 16 अध्याय में जब आते हैं तो पत्रस से शिष्य से प्रभु यीशु मसीह एक प्रश्न करते हैं, लोग मुझे ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस एकदम से उत्तर देता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह बात तुझे मांस और रोह नहीं लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने तुझ पर प्रकट की है। पत्रस का अंगीकार, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पत्थर है। पत्रस के बाइबल में 3 नाम है, शमौन, पत्रस, कैफा। कैफा का शब्द हम कृतियों में पाते हैं, पहला कृत्य उसके 15 अध्याय में। सो यहां पर हम देखते हैं कि पत्रस को प्रभु ने कहा, तू पत्रस है, पत्थर है, और मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा। अर्थात उस कन्फेशन पर, उस अंगीकार पर जो तूने किया है कि प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मेरे प्रियो, पत्रस फिर आगे बढ़ रहा है। अब कुछ एक समय बात आई तब पत्रस प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने के बारे में भविष्यवाणी की। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने मारे जाने की भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं कि एक समय आएगा सब लोग तुम में से मुझे छोड़कर चले जाओगे, तितर बितर हो जाओगे। पत्रस बड़े दृढ़ता के साथ कहता है, बड़े जोश के साथ कहता है। शायद उसके अंदर जोश तो था लेकिन होश नहीं था। बड़े जोश से कहता है, सब छोड़ दें लेकिन मैं तुझको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अगर मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार होऊंगा। यूहन्ना उसके छठे अध्याय में अगर आए तो आप अगर वहाँ बात करें पढ़ें, यूहन्ना के छठे अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी का आशीर्वाद किया, रोटी खिलाया और वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ लोग उसको छोड़कर जाने लगे, तब लोग कहने लगे, यीशु ने शिष्य से कहा, तुम भी क्या मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? उसके 42-43-45 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। पतरस ने कहा, हे गुरु, हम तुझको छोड़कर कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। ये पतरस जो बार बार इस प्रकार की बातें कर रहा है, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ओ अनंत जीवन तो तेरे हाथ में, तुझको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इस पतरस के जीवन में क्या हो गया? शायद इसलिए उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था, पतरस अवश्य कि मुर के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ। पतरस ने अंगीकार करा और जैसे मुर ने बांग दी, पतरस फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन पतरस क्यों यीशु को छोड़कर चला गया? क्यों अपने व्यवसाय में चला गया? पतरस जो बार बार इस बात को कह रहा था, ठीक है उसके उसने वो रोया, लेकिन अब तो उसको कहना चाहिए था कि ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन फिर भी वो छोड़कर चला गया। संभवतः उसके जीवन में ग्लानी आ गई थी, शायद उसके जीवन में एक ऐसा गिल्ट उत्पन्न हो गया था, ऐसा दोष उत्पन्न हो गया था, या निराशा उत्पन्न हो गई थी, हताशा उत्पन्न हो गई थी। वो अब सोचता था, मैं किसी के लायक नहीं हूं, मैंने तो परमेश्वर का इनकार किया है, मैं तो तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, अब मैं इसकी सेवा क्या करूंगा, अब मैं इसके पीछे क्या चलूंगा, अब मैं इसके किसी लायक नहीं हूं, और इसलिए अच्छा है मैं इसको छोड़ करके मैं चला जाऊं अपने पुराने कार्य में, क्योंकि मैं मछली मारने में माहिर हूं, मेरा व्यवसाय वो है, उसी के द्वारा मैं अपने परिवार के लालन पालन करूंगा, मैं अपने जीवन का चलाऊंगा और दूसरे लोगों को भी, शिष्य को भी ट्रेन करूंगा। ना केवल अपने आप गया लेकिन अपने साथ साथ और शिष्य को भी ले गया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब पीछे हटता है तो ना केवल स्वयं पीछे हटता है लेकिन कई लोगों को भी अपने साथ पीछे हटा लेता है। एक असंतुष्ट दूसरे को असंतुष्ट करता है और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सादा न हो, बुरी संगति भले चरित्र को बिगाड़ देती है। ना पतरस स्वयं अकेला जा रहा है लेकिन अपने साथ कुछ और लोगों को ले जा रहा है। पतरस तो इनका मुखिया था, इनका अगुआ था, सबसे अधिक अग्रणी रहता था, आगे रहता था, लेकिन आज उनको भी बुला के नहीं चल रहा है। मेरे प्रियो, ये स्थिति पतरस की आ रही है। तब क्या होता है, 5-4 पद से लेकर आगे हम पढ़ते हैं, और ये सब कुछ यीशु मसीह भोर के समय उसके पास आ गए। बच्चों तुम्हें मछलियां मिली ना मिली? उन्होंने कहा नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने हाथ जाल डाल। पतरस कहने लगा, हमने रात भर तो मेहनत करी है लेकिन मछलियां नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या हुआ था? पतरस तो बहुत होशियार था, पतरस तो बहुत चतुर था, उसके पास मछली पकड़ने का इस व्यवसाय का सारा ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन असफल क्यों हो रहा है? शायद वो भूल गया था कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम संदेशों में बैठा कर जब इन शिष्यों को सिखाया था, यूहन्ना उसके 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक, तो 15 अध्याय के 5 अध्याय में कहा था अपने शिष्यों, कहते हुए, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। शायद पत्रस को याद नहीं था कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा को स्मरण करके सारे कार्य करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा। पतरस तो स्वयं बुद्धिमान था, पतरस स्वयं अपने आप में होकर सब कुछ करना चाह रहा था, लेकिन मेरे प्रियो, वो भूल गया था कि परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह जो सर्व सामर्थी है, प्रभु यीशु मसीह सर्व ज्ञानी है, सर्व अधिकारी है, मछली उसका कहना मानती है और समुद्र उसका कहना मानता है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चीज उसका सृष्टि करता है और सब कुछ को जानता है, वो पतरस को जानता है, समुद्र में रहने वाली अंदर गहरे में जो मछलियां उनको भी जानता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्व ज्ञानी है। पतरस अपने हाथ पैर मार रहा है लेकिन प्रभु उसके साथ साथ चल रहा है, प्रभु उसको देख रहा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपने लहू को बहाया था। मेरे प्रियो, कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है जैसे पाई फिलिप इस बात को शेयर करते हैं, कितनी बार बड़े आनंद के साथ, जोश के साथ हम मसीह जीवन को आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, शायद कोई परीक्षा आ गई, शायद कुछ कठिनाई आ गई, शायद कोई बीमारी आ गई, शायद घर में कोई मृत्यु आ गई, शायद धन का अभाव आ गया, कुछ और हो गया, हम धीरे 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 ठंडे होने लगते हैं और ठंडे होने के बाद फिर पीछे हटते हैं, फिर हमें वही पुरानी दुनिया याद आती है, फिर हमें पुराने मित्र याद आते हैं, फिर हमें पुराने कार याद आते हैं, फिर हमें पुरानी चीज़ें याद आती हैं, फिर हम उन्हीं के साथ चलने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है हमारी क्या स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह ने 28 अध्याय के आखिरी पद में ही कहा था, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तक त्यागूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा त्यागूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमें छोड़ता नहीं। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं, तब उसके बाद ये सारी चीज जो पतरस है, यौना है, ये सारी घटनाएं घटती हैं और उसके बाद मैं इस पर ज़्यादा ठहरना चाहूँगा, आगे के भाग में जाना चाहूँगा। 15 पद में यीशु ने आकर रोटियाँ ली और उन्हें दी, इस प्रकार मछली भी। ये तीसरी बार है जब यीशु मरे हुए में से जी उठने के पश्चात चेलों पर प्रकट हुआ। पिछली बार हमने दो बार को देखा था, ये तीसरी बार है जब पतरस साथ में है और पतरस के साथ साथ छह और शिष्य हैं, ये सब मिलाकर 7 शिष्य थे जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया था। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भोजन करता है, प्रभु उनके यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करता है, यद्यपि कुछ कुछ उनकी आंखें खुल रही, कुछ कुछ पहचान है, सब कुछ हो रहा है। और अब इसके बाद जब इस सब कुछ हुआ तो पतरस जान गया कि यीशु है। लेकिन 15 पद से लेकर जिस पर हम ठहरना चाहते हैं 23 पद तक एक मुख्य विषय है, यह है पतरस के लिए, पतरस का रेस्टोरेशन, पतरस की वापसी बुलाए जाने। पहले भाग में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का कंसर्न देखते हैं। परमेश्वर को तो चाहिए था, प्रभु को तो चाहिए था कि पतरस को छोड़ देते, क्योंकि पतरस तू निकम्मा है, तू किसी के लायक नहीं है, तूने इनकार किया है, मैंने तेरे सब कुछ कहा, मैंने तुझे आगे रखा, मैंने तुझे अपने कितनी निकटता संगति में रखा, मैं तुझे वहाँ पर भी तुझे ले गया जो रूपांतर पर्वत है, वहाँ पर भी मैंने तुझे महिमा दिखाई, सब कुछ तूने देखा, इतना सब कुछ जानते हुए, शिक्षा को जानते हुए, ज्ञान को जानते हुए, अनुभव को पाते हुए, सब कुछ को पाते हुए, फिर भी तूने मेरा इनकार किया, तू मेरे लायक नहीं है। पतरस अपने स्वयं को नहीं जानता था लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस को जानता था। पतरस अपने स्वयं को नहीं जानता था। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात को जानना चाहिए कि हम अपने जीवन को स्वयं जैसा जाना चाहिए कई बार नहीं जानते। हम कहते तो हैं, हम जानते हैं, हम सोचते तो हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम सोचते तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं जानते, नहीं जानते। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु मुझे और आपको जानता है, प्रभु मुझे और आपको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने अपने हाथों से मेरे और आपकी रचना की है, उसने अपना सांस मेरे और आपके जीवन में डाला है, उसने अपने आत्मा के द्वारा मुझे और आपको बचाया है, उसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बलिदान किया है, कीमत चुकाई है, वो मुझे और आपको जानता है, वो मेरा और आपका सृष्टि करता है, पालन करता है। और ये मेरे और आपके लिए एक आनंद और आशीष की बात है कि परमेश्वर मुझे और आपको जानता है और इसीलिए वो मेरे आपके साथ सही रीति से व्यवहार कर सकता है, सही रीति से व्यवहार करता है। और तब हम यहां पर देखते हैं 15 पद से लेकर 17 पद तक में प्रभु यीशु मसीह एक ही प्रश्न 3 बार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ही प्रश्न 3 बार करते हैं 15 पद से। अतः जब विनाश तक कर चुके तो यीशु ने शमान पतरस से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य से बात नहीं कर रहे हैं, और भी शिष्य उनके साथ हैं, शायद वो सब साथ होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह देखा होगा, वो लोग सारे शिष्य सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पत्रस का परमेश्वर जो कार्य कर रहा है, पत्रस को सबके सामने पत्रस से व्यवहार कर रहा है, सबके सामने। ये निश्चय उसका व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर प्रभु ने उससे बातें चीत की होंगी व्यक्तिगत रीति से, न उसका पर्सनल रिस्टोरेशन है, उसका व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट नहीं है, एकांत बने एकांत में परमेश्वर ने बात की, लेकिन ये पब्लिक रिस्टोरेशन है। ये सबके सामने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पत्रस को वापस बुला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह सबके सामने पत्रस को वापस बुला रहे हैं। और जब हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं, वापस आने की बात करते हैं, कई बार हम प्राइवेट में एकांत में अपनी वापसी के बारे में बात करना चाहते हैं, प्रभु से अकेले में क्षमा मांग लिए, प्रभु से अकेले में कुछ हो गया। नहीं, अकेले में नहीं, लेकिन सबके सामने इस बात का प्रकटीकरण बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ कैसे व्यवहार किया है। ना केवल पत्रस जाने, लेकिन पत्रस के साथ उसके और भी साथी जो हैं, वो मित्र भी जाने कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से पत्रस के साथ व्यवहार कर रहा है। ये पब्लिक रीति से रेस्टोरेशन था उसके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रश्न किया, कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? इन सबसे बढ़कर, किन से बढ़कर? जो तेरे मित्र तेरे साथ हैं, तेरे लोग तेरे साथ हैं, तेरा कार्य तेरे साथ है, तेरा व्यवसाय तेरे साथ है, तेरी योग्यता तेरे साथ है, तेरा ज्ञान तेरे साथ है, तेरा परिवार तेरे साथ है, तेरा समाज तेरे साथ है, किन से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में बात कर रहा है। पत्रस ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पत्रस ने कहा, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। अब ये मांगे, फिर उसके बाद उसने से कहा, मेमने को चला। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीनों बार उसने कहा, यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र। क्या, क्यों यूहन्ना के पुत्र? इससे पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाम को बदला था, ओ तू शमौन नहीं, तू पत्थर है, तू चट्टान है, तूरा कन्फेशन दिन है, लेकिन अब कह रहा है तो यूहन्ना पुत्र, अर्थात उस शरीर का व्यक्ति है जो शरीर में पैदा हुआ है, यूहन्ना का पुत्र है, शरीर में है, और तुझे अवश्य है कि उस शरीर से निकाल के आत्मा में प्रवेश करना है, उसमें आना है। कह रहा है, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम उससे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूं। दूसरी बार भी उसने जवाब दिया, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तब 17 पद में उसने तीसरी बार कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? अभी वही बात जो पत्रस कह रहा है, अब वही बात को कहकर प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? पहली दो बार प्रभु ने कहा, तू मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। पत्रस उत्तर दे रहा है, मैं प्रीति करता हूं, प्रीति करता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में हिंदी में प्रेम 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 शब्द आए हैं, इंग्लिश में लव 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 शब्द आया है, लेकिन जब हम ग्रीक में जाते हैं, यूनानी शब्द में आ जाते हैं, तो दो प्रकार के इस प्रेम को अलग अलग शब्दों में दिया गया है। एक तो अगापे है, एक फिलियो है। अगापे जो शब्द है, ग्रीक का, यूनानी का शब्द है, वो उसका अर्थ है जो परमेश्वर के प्रेम से संबंधित है, जिसमें त्याग है, जिसमें बलिदान है, जिसमें सब कुछ सबसे बढ़कर वो प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अगापे प्रेम है, ये वो प्रेम है जो अद्भुत महान, सबसे महान प्रेम है जो परमेश्वर ने प्रेम किया। तो पत्रस से प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या तू मुझसे वो अगापे प्रेम, जिस प्रेम में त्याग है, जिस प्रेम में बलिदान है, जिस प्रेम में सेवा है, क्या वो प्रेम तुझसे मुझसे करता है? पत्रस कह रहा है, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। ये फिलियो प्रेम है, जो भावनाओं में है, जो संबंधों में है, जो भाईचारों में है, ये प्रेम। प्रभु यीशु मसीह इस प्रेम तक की बात नहीं कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इससे बढ़ की बात कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि पत्रस बात को समझ जाए कि अगर उसको प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु जानता था कि पतरस का जीवन क्या होगा, लेकिन फिर भी पतरस प्रभु जान चाहते थे कि पतरस जान जाए कि उस सच्चे प्रेम का अर्थ क्या है, अच्छे सच्चे प्रेम क्या क्या है। अद्भुत बात है, क्या हो रहा है यहां पर, यहां पर परमेश्वर पतरस को, प्रभु यीशु मसीह पतरस को झकझोर रहे हैं, हिला रहे हैं, उसकी खोपड़ी को हिला रहे हैं, उसकी सोच को हिला रहे हैं, उसके हृदय को हिला रहे हैं। पतरस, पतरस तू मुझे बता, तेरा प्रेम मेरे प्रति कैसा है? तूने मेरे प्रेम को देखा है? तूने मेरे जीवन को देखा है? तूने मेरे बलिदान को देखा है? तूने मेरे त्याग को देखा है? तूने मेरी सेवा को देखा है? क्या तू वो मुझसे प्रेम करता है? क्यों? आगे चलकर के पतरस को उस प्रेम को दिखाना था, आगे चलकर उस पतरस को प्रेम को पूरा करना था। और मेरे प्रियो, पतरस ने बात कहा, तब दोस्त जब तीसरी बार प्रभु ने कहा तो पतरस निराश होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय पतरस से व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में पतरस बहुमूल्य है, क्योंकि पतरस ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था, प्रतिज्ञा कर दी थी और यह कह दिया था कि तू पत्थर है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होने पाएंगे। जब परमेश्वर उसको कहा है तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा, और अगर परमेश्वर को उसको पूरा करना है तो पतरस को उस स्थान पर लाकर खड़ा करना है जहां वो चट्टान पर खड़ा हो सके। और इसलिए पतरस को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। केवल साधारण प्रेम प्रश्न नहीं है मेरे प्रियो। जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं, मैं और आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार का प्रेम हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, किस प्रकार का समर्पण आज हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, किस प्रकार का त्याग आज हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, किस प्रकार की भावनाओं को, इच्छाओं को लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, किस प्रकार की सेवाओं की इच्छा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर करने के तैयार होते हैं। जब तक एक व्यक्ति अपना क्रूस न उठाए और अपने आप से इनकार न करे तो मेरे पीछे नहीं हो सकता। यही चीज प्रभु सिखाना चाह रहे हैं, यही चीज पतरस को सिखाना चाह रहे हैं। ये अंतिम समय है और यूहन्ना इस विषय को इस रीति क्लोज करता है, जो आखिरी शब्द हम देखेंगे उसमें देखेंगे वो निचोड़ क्या पहुंचता है, उस आखिरी शब्द में क्या निचोड़ पड़ता है जो प्रभु पतरस के साथ कहना चाहता है। और तब उसके बाद लिखा है, उसके बारे जब पतरस इस बात को कह रहा है तो लिखा हुआ है क्या हुआ, पतरस उदास हुआ। पतरस उदास हुआ, क्या उदास हुआ, क्यों निराश हो गया, क्या सोच रहा है पतरस? मैं तो परमेश्वर से कह रहा हूं, मैं तो प्रभु से कह रहा हूं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन क्यों बार बार मुझसे पूछा जा रहा है? तीन बार पतरस ने इनकार किया था और तीन बार परमेश्वर ने इसी प्रश्न को किया है। तीन बार उसने इनकार किया था और तीन बार प्रभु यीशु मसीह इसी प्रश्न को करके उसको रिवाइव कर रहा है, उसको रिन्यू कर रहा है, उसको वापस ला रहा है, ताकि पतरस उसी तरीके से, उसी रीति से परमेश्वर के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए उपयोग किया जा सके। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो ये निराशा, निराशा उसकी जो निराशा थी, पौलुस क्या कहता है, मेहरबान से पढ़िए दूसरा ग्रंथियों उसका 7 अध्याय उसका 10 पद, दूसरा ग्रंथ उसका 7 अध्याय 10 पद। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। आगे हाँ, संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। 11 पद पढ़ दीजिए। कितनी इच्छा उत्पन्न कर दी हर चीज के लिए। क्या हुआ है, ये दुख ने पतरस के अंदर क्या उत्पन्न कर दिया? ये दुख वो दुख नहीं था जो वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आप बार बार मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, जरूर मैंने आपका इनकार किया है लेकिन अब मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन पत्रस अंदर अंदर कायलता में है और उस कायलता के अंदर वो पत्रस के जीवन कुछ परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और ये कार्य उसके जीवन वो हो रहा है उस आत्मा के द्वारा, ताकि वो उस उद्धार का अनुभव कर सके और जिस उद्धार को लेकर वह दुनिया में जा करके बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन सके और मेरे प्रियो ये स्थायी कार्य रह सके। और जैसा दूसरा ग्रंथ पौलुस कहता है, सो परमेश्वर अपने इस वचन की सामर्थ के द्वारा, प्रभु इनके शब्दों के द्वारा, इसलिए कहता है, लिखा हुआ है, पत्रस उदास हुआ क्योंकि उसने उसे तीसरी बार ऐसे कहा। और तब क्या हो रहा है, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? उसने उसे कहा, हे प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं। अब क्या समर्पण है इसका? अब प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू मेरी निर्बलताओं को जानता है, मेरी कमजोरियों को जानता है, मेरी अच्छाइयों को जानता है, मेरी असफलताओं को जानता है, मेरी विजय को जानता है। मैंने तो केवल अतीत को देखा है, मैं वर्तमान को देख रहा हूं, लेकिन तू मेरे भविष्य को जानता है। मेरे प्रियो, और प्रभु पतरस के बारे में जानता था, पतरस प्रभु के बारे में जानता था, प्रभु पतरस के बारे में जानता था। कहता तू तो सब कुछ जानता है, कितनी सुंदरता से क्या हो रहा है। पत्रस यहां पर अपने आप को पूरी रीत से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दे रहा है। प्रभु मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे दे रहा हूं। मेरे प्रियो, जब हम उद्धार के कार्य की बात करते हैं, इसीलिए बार बार यहां पर प्रचार किया जाता है कि बिना सुसमाचार के हमारे जीवन में उद्धार का कार्य नहीं हो सकता। चंगाई परमेश्वर दे सकता है, लेकिन चंगाई हमारे उद्धार के लिए कोई किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। मनुष्य चाहे जितना भी हो फिर भी बीमार रहेगा, लेकिन इससे शारीरिक बीमारी से बढ़कर आत्मा की बीमारी है, क्योंकि मन तो धोखा देने वाली वस्तु है। यर्मिया 17:9 में लिखा है, मन तो धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य लोग बसा है, इसके मन को कौन जान सकता है? पतरस के मन को कौन जान सकता था? पतरस स्वयं नहीं जान सकता था, केवल यीशु जानता था। मेरे और आपके मन को कौन जानता है? मैं और आप स्वयं नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह उसी का उपचार कर रहे थे, पतरस के साथ उसी का उपचार कर रहे थे। और तब यहां पर कह रहा है सब कुछ जानता है, ये पतरस का समर्पण था। मेरे प्रियो, कौन सा दिन था जब आपने अपने जीवन में उस उदास किसी को पा लिया जिसके द्वारा आपका जीवन कायल हो गया, आपका आत्मा कायल हो गया, आपके आपके जीवन में पाप ने आपको कायल कर दिया, आप रो पड़े, आप परमेश्वर के घुटनों पे हो गए, पश्चाताप करा और उस पश्चाताप के कारण उस बंधन से उससे आप आजाद हो गए और आपने अपने जीवन को एक नई रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। इसीलिए पौलुस रोमियों में उसके 12:2 में कहता, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावतः बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली और भावत इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। मेरे प्यो, ये समर्पण की जरूरत है, ये समर्पण। कौन सा दिन था, कौन सा समय था? सियोन में आने से वो सर्टिफिकेट हमें स्वर में नहीं पहुंचाएगा। प्रभु का धन्यवाद, आपने इस कलीसिया को अपना सदस्य बनाया, आप सदस्य बने, आप परिवार में, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बात यह, आपका नाम परमेश्वर के राज में लिखा होना चाहिए। और वो कैसे होगा? सच्चे पश्चाताप के द्वारा, सच्चे मन फिराने के द्वारा। मन में जब पाप के प्रति आपके अंदर उदासी आएगी, कायलता आएगी, बेचैनी आएगी, व्याकुलता आएगी, आंसू आएंगे, पश्चाताप होगा, और तब प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप मेरे जीवन को जानते हैं, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके हाथों में सौंपती हूं, मेरा छुटकारा करिए, मैं अपने जीवन के बारे में नहीं जानता, आप मेरे जीवन को जानते हैं। मेरे प्रियो, तब वो उद्धार आपके हृदय में आनंद उत्पन्न करेगा और अंत तक बना रहेगा, अंत तक बना रहेगा। यहां पर हम पतरस के बारे में देखते हैं किस रीति से ये सचमुच में, अब आगे चल करके क्यों, तभी लिखा हुआ है, हे प्रभु तू सबको जानता है, यीशु ने से कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। दो बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा, और एक बार कहा मेरी मेमनों को चला। किस ओर संकेत है, किस ओर संकेत है? हमने पहले सुषमा पहले दिन देखा था प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं और उसके सुषमा के सुषमाचार प्रचार के द्वारा उसकी कलीसिया बढ़ती चली जाएगी और उसकी कलीसिया में बहुत सारी भेड़े होंगी, उसकी कलीसिया में बहुत सारे मेमने होंगे। मेमने जो आत्मिक रीति से बच्चे हैं, जिनको अभी भी आगे बढ़ना है, परिपक्वता में आना है, वचन में, शिक्षा में, ज्ञान में उनको आगे बढ़ना है, आत्मिक रीति से उन्नति करनी है। बहुत सी भेड़ होंगी जो परिपक्वता में धीरे धीरे बढ़ रही होंगी और मेरे प्रिय वो भेड़े बहुत से मेमनों को जन्म देंगी जो कलीसिया में जुड़ते चले जाएंगे। कह रहा उनको जड़ा क्या है, प्रभु जानता था कि आने वाले दिनों में पतरस क्या करेगा, प्रभु जानता था कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को कैसे उपयोग करने वाला है। अब तो हमारे सामने सब खुला हुआ है, उस समय पतरस नहीं जानता था। अब तो हम जानते हैं कि पतरस की योजना क्या थी, कि परमेश्वर की योजना पतरस के लिए क्या थी, कि ये पतरस के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया की स्थापना कराएगा और तब ये भेड़ों का रखवाला बनेगा, चरवा बनेगा। इसीलिए पहले पतरस के 5 अध्याय में बहुत सुंदर तरीके कहता है कि एक जो भेड़ों के रखवाले हैं उनको किस प्रकार से भेड़ों की चिंता करनी है, किस प्रकार से शिक्षा देनी है, किस प्रकार से देखभाल करनी है। पतरस का ये कार्य था जो प्रभु यीशु मसीह को देने जा रहा था, क्योंकि उसकी कलीसिया की स्थापना होनी है और उसकी कलीसिया की बढ़ोतरी होनी है। प्रभु उसके बारे में जानता था और तब उसके बाद कहता है तू मेरी भेड़ों को चरा। और मेरे प्रियो जब हम चराने की बात करते हैं, चिंता की बात करते हैं, जरूर कलीसिया में सेवकों की जिम्मेदारी है। केवल भौतिक बातों में जिम्मेदारी नहीं, भौतिक में परमेश्वर ने बोल दोनों वचन साफ कहता है, वचन गलती उसके 5:6:2 में एक दूसरे का भार उठाओ, लेकिन गलतियों 2:5 में अपना भार स्वयं उठाओ। पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आत्मिक वचन की शिक्षा की है, सच्चे सुसमाचार की है, सच्ची शिक्षा की है। और इसीलिए इस कलीसिया में इस बात का प्रतिशीलता की जाती है, प्रयास किया जाता है कि आपको सही खरी शिक्षा, सही सुसमाचार आप तक पहुंचाया जाए, आपको उसकी शिक्षा दी जा सके। ये कलीसिया के अगुओं का जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी पतरस के हाथों में जानी है जो उसको आगे ना। तब उसके बाद आगे चल करके तब 18 से मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर कसके जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और कोई दूसरा तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तू चले जाएगा। उसने ये ऐसा संकेत ये संकेत देते हुए कहा कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और जब वो ये कह चुका तो उसने उससे कहा मेरे पीछे चल। 3 प्रश्न पतरस से पूछे गए, पतरस के भविष्य के बारे में बताया गया, पतरस तुझे ये करना होगा, एक ऐसा समय आएगा तुझे मेरे लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा, तुझे मेरे पीछे चलते हुए अपने आप का त्याग करना पड़ेगा और यहाँ तक कि तुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं और बाइबल के विद्वान इस बात को कहते हैं, आगे चलकर जब हम पतरस की मृत्यु के बारे में देखते हैं तो पतरस को मृत्यु सही, जो उसने प्रभु यीशु मसीह का सिर ऊपर था पाँव नीचे थे, लेकिन पतरस के पाँव ऊपर थे और सिर नीचे करके उसको भी क्रूस पर डाल के मार डाला गया। उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दिया और परमेश्वर ने उससे पहले कहा था कि तू कैसी मृत्यु को मरेगा, परमेश्वर प्रभु जानता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने न केवल वर्तमान से लेकर आगे तक का, भविष्य तक का, अंत तक का पतरस के लिए ठहरा दिया। लेकिन क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि नहीं केवल मृत्यु नहीं, उसने जो शब्द कहे हैं वो कह रहा है और ये संकेत देते हुए कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग चलते हैं उसका अपना उद्धार करता स्वामी स्वीकार करते हैं, उसके पीछे त्याग के साथ, उसके पीछे सेवक की भावना साथ, उसके पीछे कष्ट उठाते हुए चलते तैयार होते हैं, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण होता है, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा कारण होता है। पतरस का कष्ट परमेश्वर की महिमा कारण हो गया, पतरस का बलिदान परमेश्वर की महिमा कारण हो गया, पतरस की सेवा परमेश्वर की महिमा कारण हो गई, पतरस का त्याग परमेश्वर की महिमा कारण हो गई। लेकिन मेरे प्रिय जवान बच्चों मैं कहना चाहूँगा, सच है एक कीमत चुकाने तैयार रहना पड़ेगा, एक कीमत चुकाने तैयार रहना पड़ेगा। सेवा त्याग के साथ करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। केवल अगर सेवा में विश्राम और आराम की सोचेंगे तो सेवा नहीं हो पाएगी, सेवा नहीं हो पाएगी। पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह पत्रस से इस बात को, और तब उसके बाद तब आगे चल करके पत्रस ने मुड़कर पीछे आते हुए देखा जिससे प्रेम करता था, वो यौन्ना के बारे में, यौन्ना सुसमाचार के लेख में, सुसमाचार में हम यौन्ना का नाम कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन कैसे जानते हैं कि यौन्ना के बारे में? हर जगह ये लिखा हुआ है जिससे यीशु प्रेम करता था, जिससे यीशु प्रेम करता था। यौन्ना ने अपने सुसमाचार में अपना परिचय इस प्रकार से दिया है कि हम ये जाने जिससे यीशु प्रेम करता था कौन है, यौन्ना है। जिससे यीशु प्रेम करता था कौन है, वो यौन्ना है। ये उसका परिचय करने तैयार था। और यहाँ यौन्ना के बारे में जिस प्रेम करता था आता, वो जिसने भोजन के समय अपनी छाती की ओर पूछा था, प्रभु तुझे धोखे से पकड़वाने वाला कौन है? उसने देखकर पत्रस से यीशु का, हे प्रभु इस मनुष्य का क्या होगा? पत्रस पूछ रहा है ये यौना जो चला आ रहा है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? पत्रस अपने बारे में सोचते सोचते यौना के बारे में सोच रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पत्रस तू यौना के बारे मत सोच, तू यौना के बारे मत सोच। यौना की मृत्यु कब होगी, यौना कब तक जिंदा रहेगा, यौना क्या होगा, तुझे उसकी चिंता क्या? ठीक है मेरे द्वितीय आगमन तक भी अगर जिंदा रहे तुझे क्या परेशानी, लेकिन तुझे कुछ काम करना है। तू अपने बारे में सोच, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अपने बारे में सोच, क्या मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है? अपने बारे में सोच, क्या त्याग करने तैयार है? अपने बारे में सोच, क्या सेवा करने तैयार है? तू अपने बारे में सोच। और तब प्रभु यीशु मसीह इन अंतिम शब्दों के साथ अपने वचन को समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यौना में 21 अध्याय में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। ध्यान दीजिए भाई लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो, ध्यान दीजिए, जो इस पद में हैं। यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे पीछे आने तक ठहरे तो तुझे क्या लाभ? तू मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे। ये अंतिम शब्द है प्रभु यीशु मसीह के इस पूरी वार्तालाप में, ये अंतिम शब्द है जो कि ये पत्रस के लिए कह रहा है सारी बात के बाद। और तब उसके बाद एकदम से बात बदल जाती है, इसलिए भाइयों ने ये बात फैल गई। अब प्रभु यीशु मसीह की, जब फिर से मैं दे रहा हूं, अंतिम वाक्य पत्रस को कहकर प्रभु यीशु मसीह समाप्त कर देते हैं। कुछ भी हो पत्रस, केवल मेरी लालसा तेरे प्रति यह है पत्रस, मेरी इच्छा तेरे प्रति यह है पत्रस, मेरी आज्ञा तेरे प्रति यह है पत्रस, मेरी बुलाहट तेरे पीछे यह है, यह है कि तू मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे चल, और कुछ, और कुछ। मेरे प्रियो, यही बुलाहट, यही वचन, यही वाणी आज परमेश्वर मुझे और आपको भी देना चाहते हैं, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। संसार के पीछे चलने में विनाश है, संसार के पीछे जाने में विनाश है। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, संसार की रीतियों के नहीं हैं, संसार के नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। और इसीलिए कहता है मुझसे और आपसे भी कि प्रभु यीशु मसीह पीछे। पत्रस से प्रभु यीशु मसीह ने, ये उसके प्रस्थान का दूसरा कदम था जो हम देखते हैं। मैंने कहा 12 अलग अलग प्रभु यीशु मसीह ने समय पे लोगों को दर्शन दिया, बातें की, और जब 12 को हम देखते हैं किस रीति से इन अंतिम 40 दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे सुसमाचार के भेद को, अपने पूरे आगामी आने वाली योजना को किस प्रकार से पुनः इन लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद इस तरह से किया? मैं अपने पिछली बार भी इस बात को थोड़ा सा छुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे थे तो क्या हुआ था। पहली बात, लोग उसके पुनरुत्थान को पहले से, हम कह रहे थे, छुटलाना चाह रहे थे। शुरू से लोग उसके पुनरुत्थान को झुटलाना चाह रहे थे। आज भी यदि मेरे प्रियो आप परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए आते हैं, आप 10 साल से 15 साल से 20 साल से 5 साल से 2 साल से 3 साल से आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक डाउट है, क्या प्रभु यीशु मसीह जी उठा है? हाँ कहते तो हैं, कहते तो हैं, सुना तो है, जाइन चैनल में प्रचार तो होता है इसी तरह का, लेकिन आप क्या कहते हैं? आपका मन क्या कहता है? आपका विश्वास क्या कहता है? आपका मस्तिष्क क्या कहता है? आपके हृदय में क्या निश्चय है कि हाँ यीशु मसीह जी उठा है, हाँ जिस यीशु की मैं आराधना करता हूं वो जी उठा है? जब तक ये निश्चय था आपके हृदय में ना हो, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में ना हो, आप मसीह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जी उठा प्रभु है। दूसरी बात, ताकि वो जी उठने के द्वारा अपने स्वयं के अधिकार को और प्रभु सत्ता को सिद्ध कर सके, इसलिए वो जी उठा। ताकि यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि वो अपने स्वयं के प्रभु सत्ता और अधिकार को सिद्ध कर सके। अगर यीशु मसीह जी ना उठा होता तो मैं और आप यहां ना रहते हैं। लेकिन उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि यीशु परमेश्वर है, सामर्थ्य, मृत्यु उसके पांव के तले है। तब उसके बाद चौथी तीसरी बात, शिष्य को विश्वास और निश्चयता और साहस प्राप्त हो सके। क्यों? ये शिष्य चुने गए थे। अब ये शिष्य क्या करेंगे? शिष्य आने वाले दिनों में सुसमाचार प्रचार करेंगे, कलीसिया की स्थापना होगी, और वो उस बात को देखते हैं कि एक रिले रेस होती है, रिले रेस। हाथ में एक छोटा सा डंडा होता है और वो एक बात कुछ दौड़ दौड़ते दूसरे में ये दौड़। अब ये काम होगा, ये शिष्य 12 शिष्य तो चले गए। एक थोमा था जो भारत में आ गया और आकर उसने कलीसिया की स्थापना की, सुसमाचार का प्रचार का आरंभ किया। अब वो धीरे 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 भारत में फैल गया, कितने जगह पूरे संसार में, कितने जगह सबसे फैलता गया। मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखिएगा, अमेरिका देश बाद में बना है, 1770 में अमेरिका बना है, लेकिन 2000 में भारत में शुभ संदेश आ चुका था 2000 साल पहले। कई लोगों की मंजना रहते ना कि अमेरिका 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 अमेरिका, नहीं जाना चाहिए, इतिहास को जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा, इस बात को ध्यान। हमारे देश में 2000 साल पहले प्रभु का संदेश आ चुका था। तीसरी चौथी बात जो प्रभु क्यों ये हुआ कि शिष्य को निश्चयता मिले ताकि उसका सुसमाचार प्रबलता के साथ फैले और क्रियावंत हो जाए, और आज हो रहा है, आज हो रहा है। मेरे प्रियो, पत्रस का प्रभु यीशु मसीह जो उसका प्रभु है, वो आज मेरा और आपका प्रभु है। जो पत्रस के प्रति प्रभु यीशु मसीह की चिंता थी, वो आज मेरे और आपके प्रति उसकी चिंता है। जो पत्रस से उसने प्रश्न करा, वो आज मेरे और आपके सामने भी वही प्रश्न है। लेकिन प्रश्न यह है, पत्रस का उत्तर कुछ और था, क्या मेरा और आपका उत्तर वो है? क्या मेरा और आपका उत्तर वो है? क्या सचमुच में हम कह सकते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं? वो प्रेम केवल फिलियों ने, जो केवल भावनाओं के साथ या संसारी भाईचारे, केवल वो नहीं, उससे बढ़कर जो आपका प्रेम है, अगापे प्रेम, वो प्रेम जिसमें त्याग है, जिसमें बलिदान है, जिसमें सेवा है, जिसमें समर्पण है, वो प्रेम। क्या आज आप कहेंगे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी सहायता से उस प्रेम को करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, मुझे उस अनुभव में ले जाइए, मुझे से वो नम आई एम प्रार्थना।